శ్రీ చైతన్య మనోభూషితం స్థాపితం ఏన గోపి స్వయం రూపకదామయం దదా తిష్టపదాంబికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీద్వైతరాధ శివాసని గౌరభక్తులు.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే.
सो किसी ने अगर कोई पूछे, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम किया था, कि इंद्रियों की जो अर्जिस है, इंद्रियों की जो वेग है, वो हमें सहन करना चाहिए, तो कब तक सहन करना चाहिए? तो इसका उत्तर भगवान ने क्या बताया था? जब तक आप शरीर छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको इंद्रियों विषयों के वेग सहन करने पड़ते हैं. लेकिन रूप गोस्वामी ने हमने उपदेश अमृत के पहले श्लोक में क्या बताया है? कि अगर जो व्यक्ति गोस्वामी बनता है तो वो सारे इंद्रिय वेगों को जीत लेता है. तो चाहे वो पृथ्वी पर हो, शरीर में ही हो, फिर भी उसको वेग सताते नहीं. अर्थात वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम इत्यादि जो वेग है, अलग अलग प्रकार के, वो वेग हमें सताते नहीं है फिर बाद में. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम वेग के प्रति लापरवाह होकर के, उदासीन होकर के, हम साधारण स्वतंत्र जीवन जिए. क्योंकि वेग का जो आक्रमण है वो निरंतर रहता है. लेकिन ये कृष्ण भक्ति जो है, एक प्रकार का आपका इम्यून इतना स्ट्रांग कर देती है, इम्यून सिस्टम, कि बाहर का कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता. जैसे डॉक्टर लोग कई बार जाते हैं ना, तो दवाई लेके जाते हैं कई बार कुछ जगह पर, जहां पर बहुत ज्यादा क्या बोलते उसको, एपिडेमिक्स में, तो वो वैक्सीन लेके जाते हैं, राइट? तो इससे क्या होता है, हालांकि वो जाएंगे अंदर, लेकिन उनको कुछ होगा नहीं, उनको चिंता नहीं होती, क्योंकि वो निश्चिंत है. उनको दूसरों को ऐसा लगेगा कि कैसा है डॉक्टर, कितना हिम्मत वाला आदमी है ये डॉक्टर, इस सब रोगों के भी, रोगियों के बीच में जाता है फिर भी कुछ नहीं होता. लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके जा रहे हो, ताकि उनको कुछ होने नहीं वाला है. इस तरह से कृष्ण भक्ति जो है वो हमें एक प्रोटेक्शन दे देती है. फिर रोग तो है सब जगह, उसका प्रभाव तो रहेगा सब जगह, लेकिन भक्त को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने दवाई ली हुई है, वैक्सीन लगाई, कृष्ण भक्ति का, उसको कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर वो ऐसा सोचने लगे, जब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, तो अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, उसी समय उसकी दवाई की असर चली जाती है, तो फिर वो वापिस माया के चक्कर में फंस जाता है. तो नेक्स्ट श्लोक में टेक्स्ट नंबर 24,
जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सच में पूर्ण योगी है. वो परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता
है. यस, सो वो व्यक्ति प्रभुपाद इसके विषय में ऐसा लिखता है तात्पर्य में, अनलेस वन इज एबल टू रिलिश हैप्पीनेस फ्रॉम विदिन, हाउ कैन ही रिटायर फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगेजमेंट मेंट फॉर डिराइविंग सुपरफिशियल हैप्पीनेस. अ लिबरेटेड पर्सन एंजॉयज हैप्पीनेस बाय फैक्चुअल एक्सपीरियंस. हाउ ही कैन देयरफॉर सिट साइलेंटली एट एनी प्लेस एंड एंजॉय द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ फ्रॉम विदिन. सच अ लिबरेटेड पर्सन नो लॉन्गर डिजायर्स external happiness. This state is called Brahmabodh, attaining which one is assured of going back to Godhead, back home. So, Prabhupada ऐसा कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में भी, कि जब तक उसको अंतर से कोई साक्षात्कार अनुभूति ना हुई हो, आनंद का अनुभव, जब कर समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप श्रीमद् भागवत का कथा सुनने बैठते हो या मॉर्निंग लेक्चर में बैठे हो भागवत लेक्चर भागवत क्लास, तो जब तक आपका रुचि नहीं है उसके प्रति, इस कथा का आपका स्वाद नहीं मिल रहा है, तब तक आपको कंपलसरी बिठाना पड़ता है। तब घड़ी देखते हो खड़े होने का टाइम कब आएगा, कई बार देखा है हमें, कई बार होता है हम कृष्ण बलराम मंदिर में होते हैं तो लेक्चर देते तो बाहर गेट के पास भीड़ लगी होती है, कब खत्म होगा वो प्रसाद शुरू, कब खत्म होगा प्रसाद शुरू होगा, उसमें स्वाद नहीं होता है भागवत सुनने का, कथा सुनने का। तो जब तक कथा सुनने का स्वाद नहीं, एग्जाम्पल के रूप में, तब तक हमें बाहरी जो आकर्षण है वो रहेंगे, तब तक रहेंगे। एसोसिएशन का ये परिणाम आना चाहिए कि आपको रियलाइजेशन का एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आप एक्स डिवोटी के पास जाते हो तो ये सुनने मत जाओ कि प्रभु जी आप कोई नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, कोई नया समाचार, नया न्यूज दे सकते हो, गीता भागवत तो हमने पढ़ लिया, चैतन्य चैतन्य पढ़ लिया, गीता कृष्ण लीला पूरा पढ़ा हुआ है, महाभारत सुना हुआ है, रामलीला जानते हैं, चैतन्य लीला जानते हैं, कुछ नया है आपके पास? तो ये नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भक्तों के पास मत जाओ, जनरली ऐसा होता है कि नया क्या दे, है ना। लेकिन उस भक्त के पास जब भी जाओ तो उसके रियलाइजेशन को समझने के लिए आप जाओ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मत जाओ, रियलाइजेशन को लेने के लिए जाओ कि उनके साक्षात्कार क्या है, उन्होंने क्या रियलाइज किया है, उन्होंने उनके अनुभव क्या है, वो अनुभव को सीखने के लिए जाओ, क्योंकि उससे हमारे रियलाइजेशन इम्प्रूव होते हैं, अनुभव इम्प्रूव होते हैं। सो वी मस्ट गेट अ हायर टेस्ट, और ये अर्जेंसी है, ऐसा नहीं है कि ठीक है अभी करेंगे पर अभी कल कर लेंगे, ऐसा परसों कर लेंगे, ऐसा ये अर्जेंट है। ऐसा ये मत सोचिए कि आपके लिए बहुत लंबा आयुष्य पड़ा है और आप जो चाहो कर सकते हो। हमें अच्छी संगति से ये श्रवणम कीर्तन का लाभ उठाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, ये जो अर्जिस है ना, जो वेग, वो हम पर हावी हो जाएंगे, ये हमें उनका विक्टिम बना देंगे। हालांकि हम तो जानते थे कि ये नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, फिर भी क्योंकि हमने संग नहीं किया वैष्णव का। मेरे पास ऐसे हजारों उदाहरण है जिसमें क्या होता है कि भक्त अच्छा है, जुड़ा हुआ है, सेवा करता है, सोला माला करता है, यात्राएं करता है, परिक्रमाएं करता है, नियमों का पालन करता है, दीक्षा विक्षा सब ले ले, लेकिन संग थोड़ा सा भी कमजोर हुआ तो ऐसी फालतू बात उसके मन में घुस जाएगी, फालतू बात, और जिसके लिए आपको अधिक समय देना पड़ता है उसको समझाने के लिए कि इस विचार को त्याग दो, इस विचार, ये विचार तुम्हारे हित में नहीं है, ये विचार कहां से तुम्हारे माइंड में आया, और उसका और इस विचार का आधार वो शास्त्र से देता है, मिसयूज ऑफ स्क्रिप्चर, वो शास्त्र का तोड़ मरोड़ करके अपने विचार को प्रस्थापित करता है और फिर उस विचार को पकड़ के बैठता है कृष्ण भक्ति के नाम पे। हालांकि ये समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि उसने भक्तों की संगति का लाभ नहीं उठाया था, भक्त का संग नहीं किया था उसने। इसलिए मैं कई बार भक्तों को सीधा ऐसे बताता हूँ, कभी कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो जो प्रश्न पूछते उसका सॉल्यूशन नहीं देता, और यही चीज उनको बताता हूँ इनडायरेक्टली कि आप संगति को इम्प्रूव कीजिए, ताकि अगर मैं अभी आपको प्रश्न का आंसर बताना जाऊंगा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप भक्तों की संगति में अधिक समय व्यतीत कीजिए, फिर आप 7 दिन के बाद आएंगे तो शायद मेरी बात को आप समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको अर्जेंट बेस पर करना चाहिए, अर्जेंट बेस पर, कि टाइम नहीं हमारे पास, ऐसा मत सोचिए कि भाई थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए लाइफ में, नहीं ये मत सोचिए। सो कृष्ण गिव्स मोर सिम्टम्स, यस
थोड़ा मैं समझी नहीं पूछिए।
हाँ बताइए, कौन सी बात नहीं समझे, किस बात को लेकर के?
आप भक्तों की संगति से अलग हो रहे हैं
तो क्या होगा ऐसा? हाँ मैं ऐसा बता रहा था कि अगर समझ लो कि रामदास है, वो अच्छा भक्त है, सेवा भी करता है, सब कुछ है उसका, लेकिन उसने साधु संघ को इतना महत्व नहीं दिया, वैष्णव की संगति को। संगति का अर्थ समझ लेना चाहिए कि सोशलिटी को संगति नहीं कहते हम, जिसको हम इस्कॉन अंतर्गत जो सामाजिक व्यवहार होते हैं, इस्कॉन अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, वो केवल संगति का आधार नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि किसी डिवोटी की शादी में जाना या किसी डिवोटी की बर्थडे पार्टी में जाना ये वैष्णव का संघ हो रहा है, ये नहीं समझना चाहिए। साधु संगत का अर्थ होता है कि आप ऐसी व्यक्ति का संग करो जो आध्यात्मिक रूप से आपको इंस्पायर करे, आपको प्रेरणा दे, और जिसके कारण आपका आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता, उसी को संगति बोलते हैं। जब तक परिवर्तन नहीं हो सकता उसको संगति बोलना मुश्किल है।
तो इसके लिए मंदिर जाना जरूरी है?
मैं संगति की बात हुई, मंदिर में हो तो मंदिर में, मंदिर के बाहर हो तो बाहर, जहाँ पर भी जा सकते हो,
या घर में बैठ के जैसे कि YouTube में है सारे,
कहीं से भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से संग प्राप्त करना अधिक आवश्यक है, क्योंकि YouTube में वन वे होता है ना, आप सामने प्रश्न नहीं पूछ सकते इस व्यक्ति को, लेकिन जब आमने सामने होते हो तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, कि आप भी पूछ सकते हो और वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो इस तरह से संघ का फायदा होता है। मंदिर इसलिए आवश्यक है क्योंकि वहां पर भगवान के विग्रहों का प्रभाव है, वो विग्रह स्वयं ही इतने पावरफुल होते हैं कि उनकी संग, उनके दर्शन मात्र से, उनके श्रवण कीर्तन माध्यम से इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये चीज बता रहा था संक्षेप में कि जब आपको साधु संगति का अगर आप उपयोग नहीं करते तो परिणाम ये आता है कि आपके मन में जो भी डिवोटी है, समझ लो रामदास है, उनके मन में कोई ऐसा तुच्छ कोई बात फंस जाता है मन में और उसकी सेवाओं को रोक लेता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक लेता है, और उस वो तुच्छ बात जो है शास्त्र की दृष्टि से गलत है लेकिन वो शास्त्र का ही आधार देता है उसके लिए, और फिर वो उसको कृष्ण भक्ति मानने की भूल कर जाता है, तो ये सब समस्या होती है बाद में। लेकिन वो साधु संग करेगा तो ये समस्या नहीं होगी। आप समझ रहे हो क्या बता रहे थे? सो भगवान आगे और चीज बताते हैं इसके विषय में कि ऐसे व्यक्तियों का क्या लक्षण होता है, पढ़िए।
जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
यस, तो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि 24वें श्लोक में ऐसा लिखा था, अंततो गत्वा ऐसा लिखा है, है ना, समथिंग लाइक दैट, है ना,
अंततो गत्वा मींस इन द लास्ट,
हाँ अंततो गत्वा ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं 24वें श्लोक में। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आपने आज कृष्ण भक्ति लिया और आप दूसरे दिन महात्मा बन जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है। अंततो गत्वा का अर्थ होता है कि अल्टीमेटली ये मार्ग में आप अग्रसर हुए तो परिणाम यह आएगा कि क्रमशः धीरे 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 ये कार्य करना शुरू करेगा, अचानक से नहीं होता है, ग्रेजुअली और स्टेप बाय स्टेप होता है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, अल्टीमेटली आपको सफलता मिलेगी, तो उसके लिए धैर्य बड़ा आवश्यक होता है। आप अगर ये समझते हो कि प्रभु मैं तो माला का जप कर रहा हूँ लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा, तो मैं तो कल तो 16 माला किया था, आज 64 माला भी कर लिया, तो मुझे लगता है कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तब मुझे संन्यास मिलना चाहिए, है ना, तो ये गलत है, ये नहीं समझना चाहिए, इतना ग्रेजुअल है, ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो क्वालिटीज यहाँ पर बताई है ना, ये क्वालिटीज बहुत दुर्लभ होती है, सबको नहीं मिली, मुक्तात्माओं की क्वालिटी की बात हो रही है और हम दो दिन में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये मुक्तात्माओं की क्वालिटी है। इसमें प्रभुपाद एक जगह लेक्चर में बताए थे इस विषय में कि क्षीण कल्मषा, क्षीण कल्मषा का अर्थ होता है कि वन इज एबल टू रिड्यूस द रिएक्शन ऑफ ऑल सिंफुल लाइफ बाय प्रैक्टिसिंग सेंस कंट्रोल। इसका अर्थ होता है कि अगर वो डॉक्टर को फॉलो करता है कोई रोगी व्यक्ति, तो उसकी दुख नष्ट होते हैं, हमें हमारे जो क्लेश है उसको कम करना, उसको बढ़ाना नहीं है। प्रॉपर एक एग्जांपल जैसे टेम्परेचर वाला, आई थिंक मैं शायद आपको पहले कभी बताया होगा, इट्स अ नाइस, देयर इज अ नाइस स्टोरी, आई मे हैव टोल्ड इट बिफोर, ऑफ रिच हाउस होल्डर, एक धनवान व्यक्ति था, उसकी पत्नी और उसके घर में जो काम करने वाली स्त्री थी मेड, ये दोनों ही बीमार हो गए थे। सो वो जेंटलमैन ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने दोनों को चेक किया, दोनों ही बीमार थे, एक तो मालकिन थी घर की और दूसरी जो थी वो मेड थी। तो दोनों को चेक किया डॉक्टर ने और डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ का टेम्परेचर 98 है, तो वो कोई ज्यादा गंभीर बात नहीं है, दैट्स ओके, 98 तो नॉर्मल जैसा ही है, तो ज्यादा गंभीर बात नहीं है, किंतु आपकी जो मेड है उसका टेम्परेचर 104 है, इसलिए उसकी ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। ऐसा बोले तो जो मालकिन थी वो तुरंत कूद पड़ी, गुस्सा हो गई, बीमार थी हालांकि फिर भी गुस्सा हो गई, डॉक्टर को बोलने लगी इस घर की मालकिन मैं हूं, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली और मेरा टेम्परेचर केवल 98 और ये मेरी जो मेड है उसका 104, मुझे लगता है कि शायद तुम डॉक्टर हो ही नहीं, यू आर नॉट अ डॉक्टर यूसेल्फ। सो 104 से प्रभुपाद कहते 104 से आगे जाएगा तो क्या होगा, मरेगा आदमी, है ना, मर जाएगा आदमी। सो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज राइजिंग द टेम्परेचर, वी हैव कम टू द पॉइंट ऑफ 107 एटम बॉम्ब, वी आर प्रिपेयर टू किल अवरसेल्फ्स, दिस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट विल नेवर मेक अस हैप्पी, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, यू नो वी हैव टू कम टू द पॉइंट ऑफ 97 नॉट 107। तो इस तरह से क्लेशों को कम करने का है, बढ़ाने का नहीं है, जितना अधिक इंद्रिय भोग करोगे उतना अधिक क्लेश बढ़ता जाएगा। और जहां तक वेलफेयर की बात है, यहाँ पर भगवान ने ये भी कहा कि वो दूसरों को मदद करता है, वर्किंग बिजी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो हरिदास ठाकुर जब माला का जप करते थे तो चींटियों को भी उसका फायदा होता था, यहाँ तक कि वो सांप जो उनके पीछे बैठा था उसको भी उसका लाभ हुआ था। तो प्रभुपाद बता एग्जाम्पल दिए कि अगर आप घर के किसी कोने में कहीं छोटा सा भी होल होता है तो उस होल में अगर आप टॉर्च से देखो तो कई चींटियां होती है, यू नो हंड्रेड्स ऑफ एंट्स, लेकिन जब आप यहाँ पर कीर्तन करते हो, कथा करते हो, तो इन सबको इसका परिणाम प्राप्त होता है। आज दोपहर को आई गॉट टू सी अ स्मॉल बेबी 1.5 मंथ ओल्ड, मेरा भतीजा था 1.5 महीने का, तो वो इधर लेके आए थे दिखाने के लिए मुझे, तो मैं बता रहा था उनको कि बच्चा जो होता है हालांकि वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है, वो उसको बोलना आता है नहीं आता है, उसकी चेतना आपको दिखने में कैसे भी हो लेकिन उसकी आत्मा जो है वो सब कुछ सुनती है, सब कुछ, सब कुछ, आप जो जो बोलते हो सब कुछ सुनती है वो उसकी आत्मा। इसलिए अगर आप महामंत्र भी बोलते हो तो भी वो सुनती है आत्मा, इट इफेक्ट्स हिम। इसलिए आई जस्ट टोल्ड हिम, उसके पेरेंट्स को मैंने बोला कि डोंट टॉक एनी नेगेटिव थिंग्स, डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट क्रिमिनल्स, यू नो डोंट यूज हार्श लैंग्वेज टू हिम, यू नो लाइक दैट। तो इस तरह इन सब चीजों को मैंने उनको बताया। द पॉइंट इज कि आत्मा जो है उसको चाहे वो चींटी के रूप में भी हो या कैसे भी हो, वैष्णव जो होता है वो हरिनाम के माध्यम से उन सबका हेल्प करता है, सबका उद्धार करता है।
आज ही गुरु महाराज के साथ हम लोग सुबह जब करते हैं दोस्त, तो महाराज थोड़ा स्पीच देते हैं, महाराज बता रहे थे सत्य घटना कि एक व्यक्ति था वैष्णव भक्त थे, वो बीमार पड़े उनको, तो मतलब
वो वैष्णव
थे हाँ ऐसे, तो फिर डॉक्टर चेक कर रहे थे, जब डॉक्टर ने उन्हें चेक किया उससे, तो उसके अंदर से महामंत्र
इसलिए आत्मा तो सुनता है
महामंत्र, उनको सुनाई दिया डॉक्टर को, डॉक्टर एकदम थोड़ा शॉक हो गए, क्या मैं क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि
ये नहीं सोचना वो व्यक्ति की हमारी भाषा पता है या नहीं पता, ये नहीं सोचना कि वो पुरुष है या स्त्री, ये नहीं सोचना कि वो जिंदा है या बेहोश है, ये नहीं सोचना कि वो बच्चा है या बड़ा है बूढ़ा है, ये मत सोचो, ये सब मत सोचो, क्योंकि उसके शरीर से उसका कोई संबंध नहीं है, हरिनाम सीधा आत्मा को स्पर्श करता है। सो इस तरह से सोचना जी, आप कहेंगे उसने कान में रुई डाल दी है सुन नहीं पाएगा, लेकिन आत्मा में रुई कैसे डाल सकते हो आप, है ना, वो सुनेगा ही, राइट। सो टेक्स्ट नंबर 26 में रीअश्योरेंस भगवान दे रहे, पढ़िए टेक्स्ट नंबर 26।
जीव क्रोध तथा सर्व भौतिक कामनाओं की रहेला छे, जीव आत्मज्ञानी आत्म संयमी तथा पूर्णता पामवा माटे सतत प्रयास करनारा छे, तेमनी मुक्ति नजीकना भविष्यमां सुनिश्चित होय छे।
हाँ, तो जो लोग यहाँ पर बता दिया भगवान ने कि जो लोग सब प्रकार की भौतिक इच्छा और क्रोध से मुक्त है, और ये वैष्णव का लक्षण है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, जो निरंतर सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सब लोग क्या है, मुक्ति अवस्था उनको प्राप्त होने ही वाली है। तत्ते नुकंपा सुमिक्षमा, हमने बताया था ऋग्वाग वपुभिर विदधन नमस्ते जीवे स्वयं मुक्ति पदे सुधार। तो व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है अगर वो हर एक वस्तु को भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करता है, तो भगवान उसको सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। जैसे गजेंद्र, तो गजेंद्र के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने केवल एक फूल अर्पण किया था, तो भगवान ने सुना था। इतना सुनने के बाद भी हमें विश्वास नहीं होता कि कृष्णा हमसे प्रसन्न हो सकते है, कृष्णा हमसे प्रसन्न, कृष्णा हमारा, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, बाय विजन एक वो शास्त्र का श्लोक एक मेंशन किया है, यू नो द फिश ब्रिंग्स अप इट्स ऑफस्प्रिंग सिंपली बाय लुकिंग एट देम, मछली जो होती है वो अपने बच्चे का पालन पोषण उसको देखने से करती है, उसको उसके लिए उसके पास नहीं जाना पड़ता, यू नो कि मछली भले दूर होगा लेकिन अपना बच्चे को उसका पालन करती है। तो मछली का एग्जाम्पल प्रॉपर देते हैं कि दूर से जस्ट बाय सीइंग अपने बच्चे का उछेर करती है, अब उसका पालन करती है। देन द टॉर्टोइज ब्रिंग अप इट्स ऑफस्प्रिंग सिंपली बाय मेडिटेशन, टॉर्टोइज कछुआ ना, कछुआ केवल ध्यान करके, वो तो छूता भी नहीं देखता भी नहीं, मछली तो देखती भी है लेकिन कछुआ तो देखता भी नहीं है, केवल ध्यान करके उसके बच्चे का पालन पोषण करता है। अब सोचिए ये है लोअर स्पीसीज की बात हो रही है, निचली योनियों की बात हो रही है यहाँ पर, कि कछुआ मछली, यू नो द एग्स ऑफ द टॉर्टोइज आर लेड ऑन द लैंड एंड द टॉर्टोइज मेडिटेट्स ऑन द एग्स व्हाइल इन द वाटर। सिमिलरली प्रभुपाद यहाँ पर बताया कि अंडे बाहर होते हैं और कछुआ पानी के अंदर होता है, लेकिन फिर भी अंडे पक जाते हैं। सिमिलर द डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऑल्दो फार अवे फ्रॉम द लॉर्ड्स अबोर्ड कैन एलिवेट हिमसेल्फ टू द अबोर्ड सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ हिम कॉन्स्टेंटली बाय एंगेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट फील द पैंग्स ऑफ मटेरियल मिजरीज, दिस स्टेट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्रह्म निर्वाण, द एब्सेंस ऑफ मटेरियल मिजरीज इट बीइंग कॉन्स्टेंटली इमर्स्ड इज सुप्रीम। अब मैं बताया कि ये निचली योनियों का एग्जाम्पल लिया, टॉर्टोइज और मछली, अगर इनमें इतनी छोटी सी सुविधा है कि वो ध्यान लगा करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे हम जीवों का, भक्तों का पालन पोषण नहीं कर सकते क्या? जिसका अर्थ होता है कि आप अगर जो चिंतन करते हो, भगवान का स्मरण करते हो, हरिनाम उच्चारण करते हो, जप करते हो, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट इफेक्ट। आप ये नहीं सोचना कि हाँ कहाँ भगवान कितना दूर होंगे, कितने माइल्स ऊपर होंगे आकाश में, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, और मैं यहाँ अहमदाबाद के किसी कोने में बैठे जप कर रहा हूँ, इससे क्या होने वाला है, ये नहीं सोचना। क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान को इन्वोक करता है, भगवान की कृपा को ये इन्वोक करता है। पहले विद्याभूषण कहते हैं जो श्लोक आगे बताया उसमें कि भक्त का गंभीरता देख करके भगवान अपनी कृपा को एक्सटेंड करते हैं। भगवान भक्त चाहता है उनको कृपा प्राप्त, भक्त चाहता है सेवा करना। अभी अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि स्ट्रॉन्ग डिजायर प्लस हार्ड वर्क प्लस डीप प्रेयर्स, ये तीन जब इकट्ठा होता है तब सफलता प्राप्त होती है, तब आपको सफलता प्राप्त होती है। क्या? एक तो तीव्र इच्छा, कठिन संघर्ष और भगवान से प्रार्थना, ये तीनों से जब आपके साथ इकट्ठी हो जाएगी तब आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ सोचा और हुआ नहीं, ये तीनों की आवश्यकता होती है। एक रूप से देखा जाए तो मन सा वाचा कर्म जैसा भी है, मन से इच्छा करो, कर्म से हार्डवर्क करो और प्रार्थना करो वाणी से, एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन कहने का अर्थ है कि अगर ये तीनों चीज जब आओगी आपकी तब आपको सफलता मिलेगी, तब भगवान की कृपा आप पर बरसेगी, इन्वोक कर पाएंगे आप, आकर्षित कर पाएंगे भगवान की कृपा को। क्योंकि कृपा नहीं देने का वचन नहीं लिया है भगवान ने कि मैं तो प्रतिज्ञा लेके बैठा हूँ कि अहमदाबाद में किसी डिवोटी को कृपा दूंगा ही नहीं, है ना? भगवान ने ऐसा कोई वचन नहीं लिया है, वो सबको कृपा देना चाहते हैं। लेकिन कृपा ग्रहण करने के लिए, कृपा को आकर्षित करना भी तो आना चाहिए ना, पात्रता, कृपा को हमें खींचना पड़ता है ना हमारी, और कि हमें भी कृपा दीजिए तो कैसे आएगी। तो ये बात है। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
कई बार ऐसा महसूस होता है कि 99% पानी में डूब जाने के बाद भरोसा नॉर्मली है कि वो बचा ही लेगा, लेकिन 99% डूब गए सिर्फ नाखून बार है और तभी वो कृपा करता है, ऐसा जनरली क्यों होता है?
क्योंकि 99% तक पहुंचते समय तक हमें ये विश्वास नहीं था कि वो कृपा कर सकता है, इसलिए भगवान ने ऐसा सोचा कि अब तो इसका ये इसका श्रद्धा है ही नहीं, तो अब मुझे आउट ऑफ द रूल अपने नियम तोड़ करके उसका हेल्प करने जाना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसे मानेगा नहीं, इसलिए अभी बेटा अगर समझदार नहीं है तो फिर बाप को थोड़ा कृपा ज्यादा बैठाना पड़ता है।
नहीं नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डिवोटी को भरोसा है भगवान पे कि वो तार ही लेता है, ऐसा भरोसा है, फिर भी लगभग 98-99% तक वो ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि वो जैसे डूब गया फिर भी उसको भरोसा होता है, तो वो 98 पे ही बचाते हैं, उससे पहले नहीं आते। जैसे द्रौपदी सभी के पास गई थी लेकिन लास्ट एंड में भगवान आए थे। तो ऐसे डिवोटी के लाइफ में भी कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होता है कि उनको ऐसे वो लगता है कि ये बाजी मेरे हाथ से गई,
भगवान कसूरी करना चाहते हैं। द्रौपदी के केस में तो द्रौपदी ने एक हाथ से पकड़ के रखा था साड़ी, तो भगवान क्या करे, जब तुम अपने पर विश्वास है तो भगवान क्यों बीच में पड़े, तुम खुद ही इतने शक्तिमान हो तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब वो संपूर्ण शरणागत होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि संपूर्ण शरणागति भी होने के बाद भी नहीं आते हेल्प करने के लिए, तो उसका कारण यही होता है कि वो कुछ आपको शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं कि आपने क्या किया, इसका परिणाम आपको दिखाना चाहते, मिरर। शोइंग यू द मिरर, सी अब जैसे आपने ये किया तो आप आगे से ये काम मत करना, तो अभी ये भोगना है, हाँ ये तो भोगना पड़ेगा.
याद रहता है वो कि नहीं नहीं करना है ऐसा.
तो इसलिए कई बार भगवान करते हैं ऐसा कार्य, ऐसा नहीं है. लेकिन हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि भगवान कब हेल्प करें. क्या शरणागति का अर्थ ही होता है जैसे प्रहलाद महाराज उसको उठा करके फेंक दिया समुन्द्र के अंदर, तो ये नहीं सोचा कि यू नो जाते समय सीधा कि अब क्या करेंगे, भगवान आएंगे नहीं बचाने तो अब अंदर क्या होगा, कोई खा जाएगा, कुछ नहीं. शरणागत मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार. हे प्रभु आपको मारना है तो मारो, रक्षा करना है तो रक्षा करो, आपके दास का पूरा अधिकार है, जो चाहो कर सकते हो. आश्लीष सेवा पाद रताम विनष्ट माम, जो करना है कर सकते हो. आपको पांव से कुचलना है तो ये आप बोलना आसान है, इसका करना आसान इतना आसान नहीं है. भगवान आपको पांव से कुचलना चाहे तो आप कमजोर होगा तो बोले कि मैं तो छोड़ दूंगा, हरे कृष्ण नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं करूंगा भक्ति भक्ति. इतना करने के बाद अगर अंत में कुचल नहीं है तो ऐसे ही पीसा ही जा रहा हूँ चक्की में, तो क्या अंतर है. हाँ ये परीक्षा है आपकी, तो इसलिए आपको शरणागत पूर्ण रूप से होना है. बोलिए बोलिए.
भरोसा ऐसा है प्रभु जी, भरोसा या तो होता है या नहीं होता. भरोसा में परसेंटेज नहीं हो सकता कि 99% हो 98%
नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रपोर्शन है.
प्रपोर्शन सिचुएशन
इट्स ऑल अबाउट प्रपोर्शनेट,
नॉट ऑल ट्रस्ट के परसेंटेज की बात नहीं. सो मैंने बोला ना लाखों बार फिर भी एक आशा है वो बचा देगा उसकी बात. वो सिचुएशन लाखों बार मतलब 99 तो डूब गया है, सिर्फ 1% की बात
है. 27 और 28वें श्लोक में भगवान मुक्ति की बात करते हैं, सेम मुक्ति जिसके आगे बात हुई सांख्य योग के माध्यम से, और यही मुक्ति अब अष्टांग योग से कैसे प्राप्त की जाए ये भगवान ब्रीफ में बोलते हैं दो श्लोक में. पढ़िए.
समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बताता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है. जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है.
हाँ देखो अर्जुन, पहले मैंने आपको बताया कि कर्म का मार्ग समझाया, फिर मैंने कहा कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है चौथे अध्याय में, फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करना सबसे श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग, और उससे मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है. तो ये सांख्य के माध्यम से और ज्ञान के माध्यम से जो मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, ये अवस्था को अगर तुम चाहो तो अष्टांग योग के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो ये अवस्था. तो अष्टांग योग के माध्यम से प्राप्त अवस्था को प्राप्त करने का मन इंद्रियां बुद्धि को वश में लाना, नाक के अग्र भाग पर आंख के ध्यान को केंद्रित करना, ये सब उसकी प्रोसेस है अष्टांग योग की. श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि अष्टांग योग का 8 अंग होते हैं. इसके अंदर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. आप ऐसे कितने भक्त है कि जो बिना किताब के 8 अंग सिक्वेंस में बोल सकते है, 1-2 रैंडम कितने बोल सकते हैं? 3 और कोई बिना किताब खोले? ओके. सो हम चाहते हैं कि आगे छठे अध्याय हम शुरू करेंगे उसमें तो इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये 8 अंग है अष्टांग योग के. ये भगवान आगे छठे अध्याय में समझाने वाले हैं. तो इसके माध्यम से मुक्ति कैसे प्राप्त हो, और फिर भगवान यहाँ पर अंत में चर्चा करते हैं कि ये छठे अध्याय में बताऊंगा मैं आगे. एक्चुअली भगवान थोड़ा सूत्र रख देते हैं हर एक चैप्टर के अंत में ताकि नेक्स्ट डिस्कशन उसके आधार से शुरू हो सकती हो. तो यहाँ पर कृष्ण इस चैप्टर को पूर्ण करते हैं कि किस तरह से अर्जुन शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है इवन इन द मिडल ऑफ बैटल फील्ड, युद्ध भूमि के बीच में शांति सूत्र बता रहे भगवान। कि अगर आप किसी को बोलते हो पीस फॉर्मूला, तो ये पीस फॉर्मूला भी भगवान ने कहां पर बताया? युद्ध भूमि में, जहां शांति की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। शांति दूत बनकर जब भगवान फेल होकर वापस आए, फिर भगवान ने शांति सूत्र बताया अर्जुन को भगवद गीता में, तो वो पढ़ी शांति सूत्र।
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति भाव करता है।
यस, तो यहाँ पर श्लोकों को अगर देखोगे तो भोक्तार अहम भोक्तारम भोक्तारम यज्ञ तपस्या, सभी यज्ञ और तपस्याओं का जो मैं अंतिम जो एंजॉयर हूं, भोक्ता भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो ये स्थान और कोई नहीं ले सकता, अगर जब लेना भी चाहेगा तो उसको अशांत हो जाएगा। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्या और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का अंतिम महेश्वर मैं हूं, अंतिम प्रोप्राइटर। फर्स्ट इज एंजॉयर, सेकंड इज प्रोप्राइटर। मैं हूं, तुम नहीं हो। ये मत समझना कि इस देश का राजा तुम है, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस तो अमेरिका का मालिक हुआ, या फिर मेरी इतनी संपत्ति है, या स्विस बैंक में मेरा इतना पैसा पड़ा है, कुछ नहीं। सबका भगवान कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, तो तुम इस लोक की बात कर रहे हो, भगवान तो सभी लोक के महेश्वर है, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, सभी लोक के महेश्वर है। तो भगवान को जो पूर्ण प्रोप्राइटर के रूप में मानता है, और सबसे आगे है सबका हितैषी, अंतिम हितैषी, सुहृद सर्वभूतानां, सबका अंतिम वेलविशर। मैं अंतिम वेलविशर नहीं हो सकता ना, आप अंतिम वेलविशर नहीं हो सकते। जैसे कि कई बार कुछ लोग होते हैं कि प्रभु जी हम वैष्णव के रूप में किसी भक्त के प्रति बहुत सारी प्रार्थनाएं करें, बहुत सारी पूजाएं कराएं, बहुत सारी ये, तो ये वेलविशर का ढोंग है एक प्रकार का। आप क्या वेलविशर हो सकते हो किसी के? कौन है सर्वोत्तम वेलविशर? कौन है? कृष्ण है। क्या आप उसकी पोजीशन लेना चाहते हो? क्या आप भगवान की पोजीशन लेना चाहते हो सर्वोत्तम वेलविशर होने की? ये आप नहीं ले सकते, अगर चाहो तो भी नहीं हो सकता, ये आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किसी के बहुत बड़े वेलविशर हो, सर्वोच्च वेलविशर हो, क्योंकि भगवान से अच्छा वेलविशर तो कोई हो ही नहीं सकता। आप क्या जानो उसके कर्मों का इतिहास क्या है? आप क्या जानो आपके कर्मों का इतिहास क्या है? इसलिए भगवान के ऊपर ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान सभी अवस्थाओं में मेरी रक्षा करेंगे, सभी अवस्थाओं में, चाहे कैसी भी अवस्था आ जाए, कितना भी कष्टमय स्थिति हो, लेकिन भगवान सुहृद है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हमारे स्वाभाविक रूप से मित्र है, स्वाभाविक मित्र है, स्वाभाविक। ऐसा नहीं कि हम अब हमने सोचना शुरू किया कि ये जो त्रिभंग सुंदर है वो मेरा मित्र है, नहीं ऐसा नहीं, वो तो पहले से है। आपको आप भूल गए थे, वो तो है ही पहले से, वो तो आपके मित्र है ही, और शायद आप अभी तक ये नहीं पहचान पाए कि वो आपके सबसे अच्छे मित्र है, ये आप नहीं पहचान पाए। दिस स्टेटेड इन भगवद गीता, सुहृदम मीन्स सुहृद, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन संस्कृत फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स। एक लेक्चर में प्रभुपाद ने कहा था अंग्रेजी में फ्रेंड शब्द का अर्थ होता है मित्र, लेकिन संस्कृत में अलग अलग कैटेगरी है। फ्रेंड इज कॉल्ड बंधु, वन इज कॉल्ड मित्र, एंड वन इज कॉल्ड सुहृद। सो प्रभुपाद क्या कहते हैं यहाँ पर, ये तीनों का डेफिनेशन किस प्रकार का है? A friend sincerely wants your happiness, that is surut, that's the real friend. जो sincerely आपका हित चाहता है, sincerely, वो surut है। फिर दूसरा होता है मित्र, होता है सामाजिक friend, सामाजिक मित्र। मित्र, और एक होता है बंधु, वो होता है ऑफिशियल फ्रेंडशिप। तो अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में, लेकिन सबसे घनिष्ठ मित्र वो माना जाता है कि जो सुहृद है, जो हृदय से जुड़ा हुआ है, सुहृद हृदय से, हार्ट टू हार्ट फ्रेंडशिप। कुछ लोग फ्रेंडशिप के नाम पे जीवन का बलिदान देते हैं, बोलो, फ्रेंडशिप के नाम पे, लेकिन वो यही नहीं जानते कि उसका सबसे उत्तम मित्र तो कृष्ण है, सबसे उत्तम मित्र भगवान है। तो डोंट ट्राई टू टेक ओवर कृष्णस पोजीशन। यस,
आपने बताया वेल विशर के बारे में, तो भगवान का पोजीशन ऑफ कोर्स कोई नहीं ले सकता, मगर जो भगवान के प्रतिनिधि है वो भी तो मतलब जेन्युइन वेल विशर हुए।
यस, दे आर आल्सो सुहृत बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव, दे आर सेइंग द सेम, दे यूज द सेम लैंग्वेज व्हाट कृष्ण सेज, वही चीज को दोहरा रहे इसलिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कोई व्यक्ति कि भगवान तो सोचेंगे उसके, लेकिन मैं इस व्यक्ति के लिए मर मिटूंगा और मैं ही इसका अंतिम एकमात्र शुभेच्छा हूं, तब फिर वो पछताता है, उसको भगवान फिर उसको दिखाता है अपनी पोजीशन, देखो तुम कहां पर हो और मैं कहां पर हूं, इस तरह से भगवान दिखाता है। जैसे प्रॉपर एग्जाम्पल दे पिता का, पिता कहते माय डियर बॉय, भाई यू आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, बेटा तुम ऐसा स्वतंत्र होकर कार्य क्यों कर रहे हो, मूर्खता हो तुम दुख भोगट रहे हो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, कृष्ण हमारे परम पिता है। और फिर अगर तुम मेरी बात नहीं भी मानोगे, समझ लो तुम मेरी बात नहीं माने, तो तुम्हें कॉकरोच बनना पड़ेगा, और कॉकरोच बना भी कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, आई विल कम इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच, मैं कॉकरोच की बॉडी में भी तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम टॉयलेट में रहोगे, कटर में रहोगे, कमोड में रहोगे, उसके अंदर भी मैं आऊंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ रहूंगा, आई विल स्टे विथ यू। आप सोचिए हाउ व्हाट काइंड ऑफ सुहृद इज, किस प्रकार का वेल विशर है कृष्ण, वो आपके साथ रहने को तैयार है। पहले बोल दिया आपको मत करो ऐसा काम, चूहा बनना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा, लोग तुझे देखकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये भी मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम ऐसी गंदी स्थान में भी जाओगे, इंद्रगोप जो स्टूल के अंदर कीड़ा रहता है वो, उसको इंद्रगोप एकदम छोटा सा होता है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर भी भगवान, परम पवित्र भगवान, परमेश्वर, यही त्रिभंग सुंदर कृष्ण है ना। ये ऐसे मलिन स्थान में केवल जीवात्मा के प्रति अपने प्रेम को बताने के लिए, जताने के लिए उसके साथ परमात्मा के रूप में आते हैं। और हम लोग कई बार कहते हैं सात सात जन्म का बंधन है, अगले जन्म में भी तुम्हारा यही तुम्हारी पत्नी बने, अब उसको पूछ के देखो भाई ये तुम्हारा पति जाने वाला है, वो क्या कौन सा ऋषि था वो जो वाल्मीकि बने पहले, उसके पहले हाँ रत्नाकर बोलते है उसको शायद, व्हाटएवर। तो वो उसका स्टोरी में आपने सुना होगा कि उसको बोला एक बार अपनी पत्नी को पूछो तो सही कि तुम जो चोरी वगैरह सब कर रहे हो उसका 50-50 लेने को तैयार है क्या हो। पहले बोला क्यों कर रहे हो, तो बोले अपने घर को चलाने के लिए, तो बोले एक बार जाके चेक करो पहले, वो तुम्हारा बोझा उठाएंगे साथ में अगले जन्म में। तो जाकर बोले हमने कहा आपको बोला है ये सब करो, हम क्यों आए आपके साथ नरक के लाइफ में। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है कि जो जन्मों जन्म आपके साथ रहता है, अन्यथा आपका माता पिता पत्नी परिवार का जो सेट है वो सेट अगर आप चाहो तो भी अगले जन्म में आपके साथ नहीं आएगा। सात जन्म की बात तो दूर रही, चाहो तो भी अगले जन्म में आपके साथ नहीं आएगा। इसलिए इसका अर्थ नहीं होता कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाए, बोले तुम तो मेरे नेक्स्ट लाइफ में मेरे साथ क्या आने वाले हो छोड़ो। क्या तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है तो अभी तुम तो अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हम दोनों अगर कृष्ण का चिंतन करेंगे तो हम दोनों के बीच में कृष्णा रहेंगे, तो कृष्णा फिर अब दोनों का मुक्ति हो सकेगा, तो दोनों का भगवान के धाम में स्थान प्राप्त होगा। आज आप शायद पति पत्नी के रूप में हो सकते हो, कल आप दो भाई भाई हो, यू नो हो सकता है कि परसों आप और कोई दूसरे दिन, सब ये शरीर का लिमिटेशन है, नेक्स्ट लाइफ में आप कुछ भी हो सकते हो। सो भगवान अवश्य हमारा पालन करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। अगर भगवान एक हाथी को, एक चूहे को, एक कुत्ते, बिल्ली, इन सबको हेल्प करते हैं उसके शरीर में परमात्मा के रूप में जाकर के, और केवल आपको ही छोड़ देंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा कैसे आप मान लिया? सो कृष्ण हमारे सर्वोत्तम स्वरूप है। जब आप ये मानना शुरू करोगे कि सर्व ये तीन चीज हमने बताई भगवान ने भुक्ता में तो सर्वलोक में, तो आपको शांति प्राप्त हो सकेगी। ज्ञात्वा माम शांति, ये जानने के पश्चात आपको शांति प्राप्त हो सकती है, अन्यथा शांति नहीं मिल सकती। अन्यथा तो यू कैन नॉट लव एनीबॉडी, ये फॉर्मूला आपको आपको नहीं पता ना, तो आप लोगों को अपना प्यार भी नहीं जता सकते। हाउ कैन यू लव समबडी अंटिल यू लव द मास्टर ऑफ एवरीवन। इफ यू लव कृष्णा देन यू ऑटोमेटिकली लव दोज पीपल हुम कृष्णा लव्स ऑटोमेटिकली। अगर आप कृष्णा को प्रेम करते हो तो आप स्वाभाविक रूप से उन सबको प्रेम करना शुरू करते हो जिसको कृष्णा प्रेम करते हैं। और कृष्ण किसको प्रेम करते हैं? उन भक्तों को प्रेम करते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान के शरण करते हैं। हाँ यस पूछिए।
जैसे ये आप बोले हो शास्त्र में पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक, तो छोटी बच्ची होती है या शादी करके जाती है तो मतलब माता जी पर जो व्रत होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे शादी के बाद कई
तो वो व्रत समझ गया।
हाँ तो फिर? वो भी हमारे शास्त्र के मुताबिक तो जो हमारे पूर्वज वो लोग हमें बताते थे, तो वो क्या?
वेल एक रूप से देखा जाए तो ये ज्यादातर जो हिस्सा है ये कर्मकांड है, इसलिए वैष्णव लोग इस प्रकार के व्रतों को इतना फॉलो नहीं करते स्ट्रिक्ट से। लेकिन शास्त्र में भी प्रकार है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और इन तीनों गुण से ऊपर के शास्त्र, जैसे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये तीन गुणों से पर वैष्णव साहित्य माने जाते हैं। लेकिन जैसे पुराण है अलग अलग प्रकार के, तो पुराणों में अलग अलग चीज दी हुई है कि कुमारी गाओ को ये व्रत करना, ये व्रत करना। तो ये व्रत करना अच्छी बात है ताकि एक संस्कार बच्चों में अच्छे क्रिएट हो और वो लोग डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करे, ये अच्छी बात है। लेकिन वैष्णव बालिकाएं इसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है। वैष्णव बालिकाओं को ये सब व्रत करने से, वो लोग व्रत भी करेंगे तो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के, अन्यथा उनके लिए क्या है? यहाँ पर कौन रुक्मिणी बोलेगी, यहाँ पर कोई एक तो दिखाओ कि जो तुम्हारे एक थोड़ा भी तुम्हारे लेवल में आ सकता हो, एक भी ऐसा है नहीं यहाँ जो पति के रूप में स्वीकार किया जाए, रुक्मिणी ऐसा बोली। तो इसलिए हमें वैष्णव साहित्य को ज्यादा समझना चाहिए, ये कर्मकांडी मार्ग को बाहर के लोग के लिए छोड़ देना चाहिए जो भक्ति में अभी प्रवेश नहीं किया उन लोग के लिए। सो वी स्टॉप हियर, लेकिन मैं सोचता था कि 5वें अध्याय की जो एग्जांपल से वो आपको 2 मिनट में बता दूं, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम से 6वां अध्याय शुरू करें। क्या हुआ? मैं समझा
KMV
है,
क्या
KMV KMV में होगा ही।
मोर देन 1000, फिर 500, फिर 300, बहुत छोटा बुक है।
ओके
बड़ा भी है उसमें सभी का
नहीं छोटा मतलब वही उसमें वो सभी साहित्य जो भी बोला ना सब कुछ है और उसमें मैक्सिमम कितनी बार बोला
नंबर्स मतलब हाउ मेनी टाइम
रिपीटेड ऑफ ये सारे किस्म वहां बनता है फिर उसके बाद सर्वधर्मान और
एक एएमवी में होगा भोक्ताराम एकादश भसम तो एक वो था भोक्ताराम एकादश भसम और दूसरा था विद्या विनय संपन्न तो ये इसके प्रमुख श्लोक है पांचवें अध्याय के राइट सो आपको केएमवी का लिस्ट सबके पास है कि नहीं है है ना सबके पास केएमवी का लिस्ट केएमवी का अर्थ होता है की मेमोरी वर्ड्स तो ओके
लेक्चर्स नहीं आए आपके अब तक के सारे
प्रभु
विल वर्क ऑन इट फोन नहीं
रहा ओके विल प्रेम विलास प्रभु की विल वर्क ऑन इट सो आई जस्ट फिनिश दिस एग्जांपल्स फर्स्ट
एक आध वीक में कर दूंगा पूरा
सो 5.4 जिसमें वृक्ष और मूल उसका उदाहरण सातवें श्लोक में भी मूल का उदाहरण है और कमल का उदाहरण है तेरहवें श्लोक में नौ द्वार का शहर चौदहवें श्लोक में समुद्र की लहरें टेक्स्ट नंबर 15 में फूल की सुगंध और उसी श्लोक में बादल बादल टेक्स्ट नंबर 16 में सूर्य प्रकाश और टेक्स्ट नंबर 26 में मछली कछुआ ये दोनों का एग्जांपल है और पक्षी मछली कछुआ और पक्षी तो ये एग्जांपल्स का समरी है नेक्स्ट चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे टिल दैट वी स्टॉप हियर